एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां उन सब कुछ अचानक पानी के नीचे डूब गया हो। मतलब ये सोचकर ही सच में बहुत डरावना लगता है ना। पूरा का पूरा मानव समाज, शहर, खेत, सब कुछ बस एक विश्वव्यापी तबाही में मिटा दिया गया हो।
हाँ बिल्कुल। और देखिए, आमतौर पे जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें एक साफ नक्शा मिलने की उम्मीद होती है, जैसे एक साम्राज्य यहाँ था, एक युद्ध वहाँ हुआ, और चीजें एक सीधी रेखा में चलती हैं।
सही बात है, एक टाइमलाइन होती है दिमाग में।
पर जब बात प्रलय यानी महाप्रलय की कथाओं की आती है तो दुनिया भर का इतिहास अचानक एक अजीब सी पहेली बन जाता है।
एकदम पहेली। और मेसोपोटामिया के तपते हुए रेगिस्तानों से लेकर अमेरिकास की बर्फीली वादियों तक लगभग हर प्राचीन सभ्यता के पास दुनिया के डूबने की एक ऐसी कथा है जो हैरानंगेज रूप से एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब ने सच में एक ही तबाही को अपनी आंखों से देखा था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक राज छिपा है?
यही तो वो सवाल है जो इन कथाओं को इतना रोमांचक बनाता है। हम एक ऐसे ऐतिहासिक परिदृश्य को देख रहे हैं जो पूरी तरह से उलझा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कई अलग अलग सभ्यताओं के नक्शे एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए हों।
ठीक है, तो आइए इसे खोलकर देखते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का उद्देश्य इन्हीं प्राचीन स्रोतों और ऐतिहासिक नोट्स के पन्नों को पलटना है। विशेष रूप से हम बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 6 से 9 तक की बाढ़ की कथा और मेसोपोटामिया की जो प्राचीन कथाएं हैं उनके बीच की तुलना पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
बिल्कुल। और साथ ही ये भी समझेंगे कि तबाही के बाद बची हुई मानवता के लिए कौन से नए नियम बनाए गए।
हाँ, और यहाँ शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी धार्मिक या राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करना नहीं है। हमारा लक्ष्य प्योरली इन ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में दी गई बातों को निष्पक्ष रूप से समझना और उनके पीछे के लॉजिक को ढूंढना है।
हाँ, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि इन कथाओं में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन डिटेल्स का क्यों और कैसे इतना महत्वपूर्ण है। जब हम इन कथाओं को एक साथ पढ़ते हैं
तो इनका विश्लेषण किसी जासूसी कहानी जैसा लगने लगता है ना?
एकदम जासूसी कहानी।
जासूसी कहानी से याद आया, जब मेसोपोटामिया और बाइबल की कथाओं को आमने सामने रखा जाता है तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इनका बेसिक ढांचा। दोनों ही जगहों पर एक विशाल जहाज है, एक आम आदमी जो हीरो बन जाता है, उसका परिवार है और दुनिया भर के जानवरों को तबाही से बचाने का मिशन है।
पर सिमिलैरिटी यहीं तक सीमित है। जो हम गहराई में जाते हैं तो डिफरेंसेस सच में बहुत रोचक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए उन हीरोज के नाम ही देख लीजिए।
हाँ, नाम बिल्कुल अलग है। मेसोपोटामिया की कथाओं में हीरो को ज़ियुज़ुद्रा, उत्नापिष्टिम या अथ्राहासिस पुकारा गया है।
सही, जबकि बाइबल में उनका नाम नोआ है। भाषा विज्ञान के अनुसार इन नामों के बीच दूर दूर तक कोई एटिमोलॉजिकल या शाब्दिक कनेक्शन नहीं है।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इन छोटी छोटी डिटेल्स का असर पूरी कहानी के लॉजिक पर पड़ता है। हीरो के नाम तो अलग हैं ही, पर जहाज पर सवार होने वाले लोगों की जानकारी।
वो उस वक्त के समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है।
एकदम सही। अगर इनके जहाज में बैठने वाले लोगों की लिस्ट देखी जाए तो बड़ा ही मजेदार अंतर दिखता है। नोआ का जहाज किसी एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब जैसा महसूस होता है।
एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब, ये बढ़िया एनालॉजी है।
हाँ, मतलब पुरानी किताबें बताती हैं कि उसमें सिर्फ नोआ, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां थी, कुल 8 लोग बस। लेकिन दूसरी तरफ अगर उत्नापिष्टिम के जहाज की बात की जाए तो वो तो एक पब्लिक क्रूज जैसा लगता है।
पब्लिक क्रूज, बिल्कुल। उसमें उसका परिवार, सारे रिश्तेदार और यहां तक कि क्राफ्ट्समैन यानी शिल्पकार और नाव चलाने वाले मजदूर भी शामिल थे। ज़ियुसुद्रा और अथ्राहासिस की कथाओं में भी ऐसी ही भीड़ दिखती है।
ये अंतर क्या दर्शाता है असल में?
ये अंतर दर्शाता है कि अलग अलग सभ्यताएं किस तरह इस नई शुरुआत को अलग अलग नजरिए से देख रही थीं। एक जगह फोकस सिर्फ एक पवित्र परिवार पर है और दूसरी जगह फोकस
पूरी सभ्यता की टेक्निकल स्किल्स को बचाने पर है।
और इसी तरह के छोटे अंतर हमें इन कहानियों के अंदर छिपे हुए साइंटिफिक और लॉजिकल सोच की ओर ले जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वो घटना है जब उबाद का पानी कम होने पर पक्षियों को जहाज से बाहर छोड़ा जाता है।
ओ हाँ, पक्षियों वाली बात। ये देखने का एक प्राचीन तरीका था कि क्या जमीन सूख गई है।
हाँ, बेबीलोन की कहानी और बाइबल की कहानी दोनों में ये घटना प्रमुखता से आती है। पर बेबीलोन की कथा में पक्षियों को 3 बार छोड़ा गया, जबकि बाइबल में 4 बार।
और इसी में एक ऐसी डिटेल है जो सच में दिमाग को घुमा देती है। ऐतिहासिक टेक्स्ट बताते हैं कि नोआ ने सबसे पहले एक कौवा यानी रेवन को जहाज से बाहर छोड़ा और उसके बाद कबूतर यानी डव को।
राइट। लेकिन उथनपिष्टम की कहानी में सीक्वेंस बिल्कुल अलग है। उसने पहले कबूतर छोड़ा, फिर एक और पक्षी स्वॉलो, और सबसे आखिर में कौवा छोड़ा।
अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है ना, पक्षी तो थे।
लेकिन ये सीक्वेंस इतना मायने क्यों रखता है?
इसका बहुत ही लॉजिकल जवाब अलेक्जेंडर हाइडल की रिसर्च द गिलगमिश एपिक एंड ओल्ड टेस्टमेंट पैरेलल्स में मिलता है। हाइडल ध्यान दिलाते हैं कि उथनपिष्टम के पक्षी छोड़ने के लॉजिक में एक भारी गलती थी।
गलती कैसे?
इसके पीछे पक्षियों का प्राकृतिक स्वभाव समझना जरूरी है। कौवा एक स्केवेंजर पक्षी होता है, वो बहुत ही मजबूत और हार्डी होता है।
अच्छा, तो वो उबलते हुए तबाहशुदा वातावरण में भी जिंदा रह सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो पानी पर तैरने वाले मृत जानवरों या कचरे को खाकर अपना गुजारा कर सकता है। दूसरी तरफ कबूतर एक बहुत ही नाजुक पक्षी है, उसे उतरने के लिए सूखी जमीन और खाने के लिए ताजा वनस्पति यानी फ्रेश वेजिटेशन चाहिए होती है।
तो इसका मतलब ये है कि नोआ का सीक्वेंस पूरी तरह से एक लॉजिकल प्रोग्रेशन पर आधारित था। उसने सबसे मजबूत पक्षी को पहले भेजा।
सही पकड़ा। अगर कौवा सर्वाइव कर लेता है और वापस नहीं आता तो इसका मतलब हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है।
फिर वो नाजुक पक्षी कबूतर को भेज सकता है जो तभी जिंदा रहेगा जब सच में जमीन पर हरियाली वापस आएगी।
एकदम लॉजिकल। जबकि उथनपिष्टम ने नाजुक कबूतर को पहले भेजा, जो कि तबाही के ठीक बाद किसी काम का नहीं होता, और मजबूत कौवे को उसने सबसे आखिर में भेजा।
तो हाइडल का मानना है कि बेबीलोन की कथा में ये एक बड़ी लॉजिकल चूक है ना?
हाँ, और यही चूक एक नए और बड़े सवाल को जन्म देती है।
वेट, अगर एक कहानी में इतना सॉलिड लॉजिक है और दूसरी में उतनी ही बड़ी चूक, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि किसी एक ने दूसरे से कहानी नकल की थी और नकल करते वक्त कुछ डिटेल्स आगे पीछे हो गई? जब कहानियां इतनी मिलती जुलती हैं तो डेफिनेटली उनके बीच कोई कनेक्शन तो होगा। तो मुद्दा ये है कि कौन किसकी नकल कर रहा था।
ये बहस इतिहासकारों और विद्वानों के बीच सदियों से चल रही है। प्रमुख रूप से इस कनेक्शन को समझाने के लिए 3 थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी ये दावा करती है कि बेबीलोनियन कथा ही ओरिजिनल है और बाकी सब कॉपी हैं।
इस थ्योरी का आधार क्या है?
इसका मूल आधार समय यानी डेट्स हैं। बेबीलोन की कथा का जो लिखित रूप हमें मिलता है वो लगभग 2000 BC का है, जबकि बाइबल की जो जेनेसिस कथा है, जिसे ट्रेडिशनल तौर पर मोसेस द्वारा लिखा हुआ माना जाता है, वो करीब 1200 से 1400 BC की है।
ओ, समय के हिसाब से बेबीलोन की कथा सदियों पुरानी है। तो सीधी सी बात है, जो इतिहास में पहले आया वही सच होगा ना? जो पुराना है वही ओरिजिनल होगा।
देखने में आमतौर पर यही लगता है, पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। विद्वान अल्बर्ट क्ले ने 1930 में इस समय के तर्क का एक बहुत ही शानदार काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया।
अच्छा, कैसा थॉट एक्सपेरिमेंट?
मान लीजिए आज से 2000 साल बाद भविष्य में कोई आर्कियोलॉजिस्ट्स की टीम खुदाई करती है। उन्हें दुनिया भर में ढूंढने के बाद शेक्सपियर के नाटकों की एक ही किताब मिलती है, और वो सबसे पुरानी बची हुई किताब जर्मन भाषा में अनुवाद की हुई है।
ओके, इंग्लिश की कोई ओरिजिनल किताब बची ही नहीं?
हाँ, तो क्या उस किताब को देखकर भविष्य के विद्वान ये घोषित कर देंगे कि शेक्सपियर असल में एक जर्मन लेखक थे?
अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत निष्कर्ष होगा। वो किताब तो बस एक कॉपी होगी जिसने समय के थपेड़े झेल लिए, जबकि ओरिजिनल शायद मिट्टी में मिल गई।
ठीक यही लॉजिक अल्बर्ट क्ले मेसोपोटेमिया और बाइबल की कथाओं पर लगाते हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जो सबसे पुराना डॉक्यूमेंट बचा है वो सुमेरियन या एकेडियन भाषा में है, इसका मतलब ये नहीं कि कहानी वहीं पैदा हुई थी।
तो उनका क्या मानना है?
क्ले समझाते हैं कि ये गिलगमिश एपिक असल में एक बहुत ही पुराने एमोराइट लेजेंड पर आधारित हो सकती है। एमोराइट्स एक प्राचीन खानाबदोश यानी नोमैडिक जनजाति थी। जब इनकी कहानियां बड़े साम्राज्यों तक पहुंची तो उन्हें अकेडिनाइज कर दिया गया,
यानी उन्हें उस वक्त की प्रमुख भाषा और संस्कृति के हिसाब से बदल दिया गया। इसलिए बाइबल की कथा किसी और पुराने स्रोत से आ सकती है बिना मेसोपोटेमिया के कथा की डायरेक्ट नकल किए।
बिल्कुल, सर्वाइवल का मतलब ओरिजिन नहीं होता।
ये पूरे ऐतिहासिक नजरिए को ही पलट देता है। तो दूसरी थ्योरी उन लोगों की होगी जो मानते हैं कि हिब्रूज ने पक्के तौर पर बैबिलोन से ही कॉपी किया था।
हाँ, दूसरी थ्योरी वही है, लेकिन अलेक्जेंडर हाइडल इस पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हाइडल कहते हैं कि भले ही दोनों कथाओं का कंकाल यानी स्केलेटन एक जैसा है, जैसे जहाज, पानी, पक्षी, परिवार,
लेकिन उनका मांस और खून और सबसे जरूरी बात उनकी आत्मा यानी स्पिरिट बिल्कुल अलग है।
सही कहा। मेसोपोटामिया की कथाओं में देवता आपस में लड़ते हैं, उन्हें भूख लगती है और वो धोखा देते हैं, जबकि बाइबल की कथा का टोन बिल्कुल अलग नैतिक और ईश्वरीय न्याय पर आधारित है।
अगर सीधे कॉपी किया होता तो कथा में इतने गहरे बुनियादी और थियोलॉजिकल बदलाव कैसे और क्यों आ जाते हैं ना?
वही तो, एक कथा सियासी दांवपेच जैसी लगती है और दूसरी आत्मिक न्याय जैसी।
और तीसरी थ्योरी क्या कहती है?
तीसरी थ्योरी को कॉमन सोर्स या साझा स्रोत कहा जाता है। वॉन ब्राड जैसे इतिहासकार मानते हैं कि दोनों ही कथाएं एक ही पुरानी मूल परंपरा से निकली हैं,
जो शताब्दियों से मौखिक रूप से चली आ रही थी।
हाँ, दोनों सभ्यताओं ने इस मूल कथा को लिया और अपनी अपनी आजाद राह चुनी, उसमें अपने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य जोड़ दिए,
लेकिन मूल स्रोत एक ही था।
यहाँ मैं इस चर्चा को एक और गहरे एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से जोड़ना चाहूंगे। हमने बात की कि लगभग हर जगह बाढ़ की कहानियां मिलती हैं, चाहे वो प्राचीन भारत की मत्स्यावतार की कथा हो, पर्शियंस की कहानियां हों, ये यहाँ तक कि अमेरिकाज में रहने वाले एस्किमोस की लोक कथाएं हों,
दुनिया के हर कोने में।
हाँ,
तो क्या इतने व्यापक पैमाने पर एक ही कहानी का मिलना इस बात का पूर्ण प्रूफ नहीं है कि सच में पूरी दुनिया में एक कॉस्मिक इवेंट या विश्वव्यापी तबाही आई थी जिसे सबने देखा?
ये एक बहुत ही आकर्षक धारणा है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यानी मानव विज्ञानी इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। वो इस फैलाव को डिफ्यूजन का नाम देते हैं।
डिफ्यूजन, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ?
डिफ्यूजन का मतलब है एक जगह से चीजों या विचारों का दूसरी जगह फैलना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैजिक फ्लाइट की कथा का उदाहरण सबसे सटीक है।
मैजिक फ्लाइट, ये कैसी कहानी है? मैं इसके बारे में नहीं जानती।
ये एक ऐसी लोक कथा है जो पूरी दुनिया में लगभग हर महाद्वीप में मिलती है। इस कहानी में एक हीरो किसी राक्षस या बुरी शक्ति से बचकर भाग रहा होता है।
ओके।
भागते हुए वो पीछे अपने कंधे के ऊपर से कुछ चीजें फेंकता है। जब वो एक छोटा पत्थर फेंकता है तो पीछे एक विशाल पहाड़ बन जाता है। जब वो तेल या पानी की बूंद फेंकता है तो एक बड़ी झील बन जाती है जिससे राक्षस का रास्ता रुक जाता है।
ओह वाओ, और ये कहानी हर जगह है?
हाँ, ये कहानी यूरोप, एशिया और अमेरिकाज में इतनी मिलती जुलती है कि डिटेल्स भी लगभग एक जैसे हैं।
ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इतिहास में सच में कोई आदमी पीछे पत्थर फेंककर पहाड़ बना रहा था और सबने उसे देखा?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कहानियां लोगों के पलायन, उनके व्यापार और माइग्रेशन के साथ सफर करती हैं।
तो इन कहानियों के फैलने का कारण लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना और आग के सामने बैठ के कहानी सुनाने का शौक था।
सही बात है, इसलिए बाढ़ की कथाओं का दुनिया भर में मिलना अपने आप में इस बात का पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि एक ही विश्वव्यापी बाढ़ आई थी जिसे सबने महसूस किया। ये डिफ्यूजन का नतीजा भी हो सकता है।
भले ही कहानी के पीछे कोई बड़ी भूगर्भीय घटना हो, पर उसका यूनिवर्सल होना ही एकमात्र प्रूफ नहीं है। कहानियां पानी से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। क्या बोलते हैं?
बिल्कुल, कहानियां बहुत तेजी से सफर करती हैं।
तो चाहे कहानियां डिफ्यूजन के जरिए फैली हों या किसी कॉमन सोर्स से आई हों, जब हम ध्यान से देखते हैं कि ये कहानियां सिर्फ एक भूगर्भीय घटना को ट्रैक करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस तबाही से बच निकलने के बारे में है, तो अचानक एक नया सवाल सामने आता है।
वो क्या?
बाढ़ का पानी उतरने के ठीक अगले दिन क्या होता है? आप एक ऐसी मानवता को दोबारा कैसे बनाते हैं जो पहले अपने ही भ्रष्टाचार से तबाह हो चुकी थी? इससे सामने आते हैं नई दुनिया के नए नियम।
सही कहा, बाढ़ के बाद की दुनिया एक पूरी तरह से ब्लैंक कैनवस की तरह थी। जेनेसिस चैप्टर 9 के विवरण के अनुसार गॉड उस बचे हुए परिवार को एक नई शुरुआत देते हैं, और सबसे पहला आदेश वही होता है जो बिल्कुल शुरुआत में दुनिया बनने के समय दिया गया था,
यानी मल्टीप्लाई करने और संख्या बढ़ाने का आदेश, जमीन को दोबारा आबाद करने का आदेश।
हाँ, लेकिन इस बार नियम थोड़े बदल गए थे, खासकर खाने पीने और जीवन को देखने के नजरिए में। अब जानवरों का मांस खाने की इजाजत दी गई, पर एक सख्त शर्त थी।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? शर्त ये थी कि मांस तो खा सकते हो, पर उसमें खून नहीं होना चाहिए, खून खाने की सख्त मनाही थी। तो मेरे दिमाग में तुरंत ये सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि बार्ड से पहले लोग प्योरली शाकाहारी यानी वेजिटेरियन थे?
ये सवाल हमेशा से उठता रहा है। विद्वान जॉन कैल्विन इस पर काफी गहरा पॉइंट रखते हैं। उनका कहना है कि टेक्स्ट इस मुद्दे पर बिल्कुल मौन है। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि पहले सब शाकाहारी थे।
तो फिर खून पर इतनी पाबंदी क्यों?
देखिए, खून ना खाने के नियम का कारण सिर्फ डाइट से जुड़ा नहीं था, इसका कारण बहुत ही आत्मिक और मनोवैज्ञानिक था। गॉर्डन वेनम समझाते हैं कि खून ना खाना असल में जीवन के प्रति सम्मान यानी रेवरेंस फॉर लाइफ दर्शाता है।
प्राचीन काल में ये माना जाता था कि जीवन खून में बसता है ना?
एकदम सही, इसलिए खून निकालना जीवन निकालने के बराबर था। इसके अलावा ये भविष्य में आने वाले सैक्रिफिशियल सिस्टम यानी बलिदान की प्रथा की ओर भी इशारा करता था, जहां खून का इस्तेमाल प्रायश्चित के लिए किया जाना था, खाने के लिए नहीं।
यानी खून पवित्र है क्योंकि जीवन पवित्र है, और अगर एक आम जानवर के जीवन का इतना सम्मान है तो मानव जीवन के लिए तो नियम और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि नई दुनिया बनानी है तो पुरानी आपसी हिंसा को रोकना जरूरी होगा।
और वही हुआ, मानव जीवन की पवित्रता इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई। नियम स्पष्ट रूप से बनाया गया कि जो कोई दूसरे इंसान का खून बहाएगा उसका खून भी बहाया जाएगा।
ओ, ये तो बेसिकली आधुनिक जस्टिस सिस्टम और मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी का पहला स्वरूप था।
बिल्कुल, और इसका मूल आधार ये विश्वास था कि मनुष्य को ईश्वर की छवि यानी इमेज ऑफ गॉड में बनाया गया है। किसी इंसान को मारना, उस छवि को खंडित करना और ऐश्वर्य नियम को तोड़ना था।
ये पूरी तरह से इंसाफ और आपसी सुरक्षा स्थापित करने का तरीका लगता है, ताकि कोई दोबारा दूसरे पर जुल्म ना कर सके।
बस, सही पकड़ा। और थियोलॉजिकल स्कॉलर्स इसे न्यू टेस्टामेंट के रोमन्स 13 से जोड़कर देखते हैं, जहां सरकारों के पावर ऑफ द स्वॉर्ड यानी तलवार के अधिकार की चर्चा की गई है।
तलवार का अधिकार?
हाँ, इस सिद्धांत के मुताबिक नई दुनिया में मानव सरकारों को ये पूर्ण अधिकार दिया गया कि वो बुराई को रोकने के लिए और न्याय स्थापित करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि सरकारों ने बाद में इस अधिकार का मिसयूज किया, पर इसका आधारभूत उद्देश्य सामाजिक ऑर्डर बनाए रखना था।
ऑर्डर बनाए रखने के साथ साथ इस नई दुनिया को एक बहुत बड़ा आश्वासन भी चाहिए था कि ऐसी तबाही दोबारा नहीं होगी, जिसे हम इंद्रधनुष यानी रेनबो के वादे या नोए कवेनेंट के रूप में जानते हैं।
यहाँ एक बहुत ही टेक्निकल पर दिलचस्प पॉइंट है। इंद्रधनुष शायद बाढ़ से पहले भी आसमान में मौजूद रहा होगा, क्योंकि वो एक प्राकृतिक रोशनी का फिनोमिनन है, पर बाढ़ के बाद उसे एक नया अर्थ दे दिया गया।
नया अर्थ मतलब एक वादा कि अब ऐसी पानी की बाढ़ से पूरी दुनिया कभी खत्म नहीं होगी?
हाँ, इसको एंथ्रोपोमॉर्फिक तरीका कहा जाता है, यानी एक मानवीय छवि का इस्तेमाल करना ये दिखाने के लिए कि गॉड को अपना वादा याद रहेगा। जैसे हम लोग उंगली में धागा बांध लेते हैं कुछ याद रखने के लिए, वैसे है आसमान में धनुष एक नेचुरल फिनोमिनन का डिवाइन रिमाइंडर बन जाना था।
नई दुनिया, साफ सुथरे नियम, आसमान में चमकता वादा, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था।
लेकिन इंसान आखिर इंसानी है, उनकी कमजोरियां पीछा नहीं छोड़ती।
सही बात है, और ये नई शुरुआत जल्दी ही दगमगाने लगती है। यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि इसी घटना ने आगे चलकर इतिहास में सबसे भयानक गलतफहमियों में से एक को जन्म दिया। मैं बात कर रही हूँ बाढ़ के बाद आने वाली केनम के श्राप की कहानी की।
हाँ, ये जेनेसिस 9 का आखिरी और थोड़ा असहज कर देने वाला यानी अनकंफर्टेबल हिस्सा है। बाढ़ के बाद दुनिया आबाद होती है, नोआ खेती करने लगते हैं, वो एक अंगूर का बगीचा लगाते हैं, वो उसकी वाइन पीते हैं और नशे में अपने टेंट में नग्न अवस्था में बेसुध सो जाते हैं।
और इस नज़ारे में एंट्री होती है उनके बेटे हम की। हम अपने पिता की नग्नता को देखता है और बजाय उन्हें ढकने के वो बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों शेम और जैफेत को बताता है, शायद उनका मजाक उड़ाते हुए।
लेकिन उसके भाइयों का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है ना?
हाँ, वो एक लंबा कपड़ा लेते हैं, अपने कंधों पर रखते हैं और उल्टे पांव चलकर टेंट में जाते हैं, ताकि उन्हें अपने पिता को उस हालत में ना देखना पड़े, और पूरे सम्मान के साथ उन्हें ढक देते हैं। पर जब नोआ उठते हैं और उन्हें इस गुस्ताखी का पता चलता है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो हैम को श्राप नहीं देते।
वही तो सबसे हैरान करने वाली बात है।
हाँ, वो हैम के चौथे बेटे केनान को श्राप देते हैं कि वो गुलाम बनेगा। ये दिमाग को चकरा देने वाला लगता है, गलती बेटे की और सजा पोते को।
देखिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस छोटी सी घटना का असर इतिहास पर कितना भयानक रहा, ये समझना बहुत जरूरी है। J.R. बसवेल III की किताब इस विषय पर गहरी रोशनी डालती है।
उन्होंने क्या कहा इस बारे में?
इतिहास में इस पैसेज का लगातार गलत इस्तेमाल गुलामी यानी स्लेवरी और रंग भेद को सही ठहराने के लिए किया गया, खासकर अमेरिका और दूसरी जगहों पर। एडवोकेट्स ऑफ स्लेवरी ने यह ख्याली थ्योरी बना ली कि हाम के वंशज नीग्रोज थे, और क्योंकि उसके वंश पर श्राप था तो उनका गुलाम होना एक डिवाइन ऑर्डर यानी भगवान की मर्जी है।
पर असल ऐतिहासिक स्रोत और टेक्स्ट इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई थी?
तो विद्वान और ऐतिहासिक टेक्स्ट इस धारणा को पूरी तरह खारिज करते हैं। बसवेल स्पष्ट करते हैं कि हाम के वंशज जो इजिप्ट और इथोपिया में बसे, वो हिस्टोरिकल टाइम्स में नॉन नीग्रो थे। इस कथा का और इस श्राप का नीग्रोज या उनकी गुलामी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था।
तो ये सब बस बनावट थी?
बिल्कुल, गुलामी का समर्थन करने वालों का ये तर्क बिल्कुल अटरली फैंटास्टिक यानी कंप्लीटली काल्पनिक और आधारहीन था। ये टेक्स्ट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पढ़ने का सबसे एक्सट्रीम और गलत एग्जाम्पल था, जिसका नतीजा पूरी मानवता के लिए भयानक रहा।
ये दिखाता है कि कैसे किसी टेक्स्ट का गलत अनुवाद पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। लेकिन मैं अभी भी उसी अजीब सवाल पर अटकी हूं, अगर थियोलॉजिकली ही देखा जाए तो श्राप उसके पोते केनन को क्यों मिला? इसके पीछे का इंटरनल लॉजिक क्या है आखिर?
ज्यादातर विद्वान इस बात को मानते हैं कि टेक्स्ट डायरेक्टली इसका सीधा जवाब नहीं लिखता, परंतु इसे एक चिड़चिड़े बूढ़े आदमी के गुस्से के रूप में नहीं देखा जाता, इसे एक भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी के रूप में देखा जाता है।
एक प्रोफेसी? किस तरह की प्रोफेसी?
ऐसा माना जाता है कि नोआ ने उस घटना में देख लिया था कि हैम के अंदर जो बेशर्मी, डिसरिस्पेक्ट और शेमलेस सेंसुअलिटी छुपी हुई थी, वही बीज आगे चलकर केनान और उसके आने वाले वंशजों यानी केनानाइट्स में और भयानक रूप लेगा।
यानी नोआ एक मॉरल ट्रेजेक्ट्री देख रहे थे, गलती एक आदमी की नहीं थी बल्कि एक पूरे वंश के पतन का शुरुआती रूप था।
बिल्कुल, और जो लोग प्राचीन कथाओं को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि लेविटिकस चैप्टर 18 इस बात का आगे चलकर समर्थन करता है। उस चैप्टर में क्लियरली वॉर्न किया गया है कि केनानाइट्स ने बाद में ऐसी ही घृणित प्रथाएं यानी अबोमिनेशंस और मॉरली करप्ट कस्टम्स अपना लिए थे, जिसके कारण उनका पतन हुआ।
तो प्राचीन टेक्स्ट अक्सर किसी एक पारिवारिक घटना का इस्तेमाल करके भविष्य में आने वाली जियोपॉलिटिक्स और सामाजिक पतन को दर्शाते हैं। ये श्राप उस फ्यूचर मॉरल डिके की एक प्रोफेसी थी।
एकदम सही समझे आप। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो हम देखते हैं कि ये प्राचीन कथाएं, चाहे वो महाप्रलय का आना हो, नई दुनिया में मांसाहार और खून के नियम हो, मृत्युदंड के जरिए न्याय लाना हो, या पहले परिवार की एक नई मॉरल गलती हो, ये सब उस प्राचीन मानव की गहरी कोशिश थी एक ऐसी दुनिया को समझने की जो तबाही के बाद एक नए सिरे से बन रही थी।
सही बात है। इन अलग अलग सभ्यताओं की कथाओं का स्केलेटन भले ही एक जैसा लगता हो, पर उनकी आत्मा और उनके संदेश इस बात का आईना है कि प्राचीन लोग तबाही, न्याय और अपनी खुद की मानवीय कमजोरियों को कैसे देखते थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कहानियां सिर्फ एक कैलेंडर की एंट्री नहीं है जो बताती हैं कि किस साल कितना पानी बरसा था। ये कहानियां एक मिरर है। ये हमें बताती हैं कि जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर होता है, तब हम किन चीजों को बचाते हैं और किन चीजों को नए सिरे से बनाते हैं।
एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन।
और इन्हीं सब बातों के बीच हमारी इस चर्चा में उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए मैं यहाँ एक नया विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने देखा कि मैजिक फ्लाइट जैसी कहानियां बिना किसी एक पक्के ओरिजिन के लोगों के पलायन और कहानी सुनाने के शौक के जरिए भाषा और संस्कृति की सारी हदें पार कर सकती हैं। डिफ्यूजन एक बहुत बड़ी ताकत है।
बहुत बड़ी ताकत है, बिल्कुल।
तो उन सभी लोगों के लिए जो और गहराई से इस पर सोचना चाहते हैं, एक सवाल है, क्या ये संभव है कि बाढ़ की कथा जो हर सभ्यता में पाई जाती है सिर्फ भूगर्भीय तबाही का दस्तावेज ना हो? क्या ये प्राचीन मनुष्य की आपसी संवाद की ताकत का सबसे पहला और सबसे बड़ा वायरल मीम हो सकता है?
ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी को खोलता है जो सीधे मानव मनोविज्ञान पर चोट करती है
ना?
क्या प्राचीन लोगों ने इस कहानी को सदियों तक इसलिए जिंदा रखा क्योंकि ये किसी रियल सुनामी की मेमोरी थी, या फिर इसलिए क्योंकि दुनिया के खत्म होने का डर और उस तबाही के बाद अकेले बच जाने की कल्पना ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे हर संस्कृति गहराई से महसूस करती है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद वही धुंधला ऐतिहासिक नक्शा जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो दुनिया की जमीन पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग की परतों पर बना हुआ है। इन बेहतरीन ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स और इस रोमांचक जानकारी के लिए बहुत बहुत आभार। इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचते रहिए और नई चीजें ढूंढते रहिए।